वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु नवैष्णवांश श्री साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तप जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा सभी लोग प्रेम से गाइए
जय राधा माधव
सब बोलिए बिल्कुल सरल है
जय राधा माधव कुंज बिहारी
Yamuna Tiravana Chari आए नहीं आला कृष्ण कृपा स्वागत करते हैं सभी भक्तों को किताब बांटी गई है अपनी किताब में से श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय सात और श्लोक क्रमांक एक निकाली और मेरे पीछे दोहराइए
शोनक उवाच निर्गते नारदे सूत
सूत
भगवान बादरायण
भगवान बादरायण
श्रुतवांस्तदभि
प्रेतम
तत किम करो विभो
ततः किम करो विभो
शिशुतुवाच
शिशुतुवाच
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां
आश्रम पश्चिमे तटे
आश्रम पश्चिमे तटे
शम्याप्रास इति प्रोक्त
शम्याप्रास इति प्रोक्त
ऋषिणां सत्रवर्धन
ऋषिणां सत्रवर्धन
तस्मिन् स्वआश्रमे व्यासो
तस्मिन् स्वआश्रमे व्यासो
बदरीषण्डमण्डिते
बदरीषण्डमण्डिते
आसिनोप उपस्पृश्य
आसिनो अपत्य
प्रणीदद्यो मन
प्रणीदध्यो मन स्वयं
भक्तियोगेन मनसि
भक्तियोगेन मनसि
सम्यक् प्राणीहिते मले
सम्यक् प्राणीहिते मले
अपश्यत् पुरुषं पूर्णम्
अपश्यत् पुरुषं पूर्णम्
मायां च तदपाश्रयम्
माया यां च तदपाश्रयः
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे
लोकस्य जानतो विद्वान्
चक्रे सात्वत संहिता यस्यां वैश्रूयमाणायां
कृष्णे परम पुरुषे
भक्तिरुपद्यते
पुंसः
शोकमोहभयापहा
संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनि
शौनकुवाच
सवै निवृत्ति निरतः
सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता
आत्मा रामः समभ्यस
शौनकुवाच सवै निवृत्ति निरतः
सर्वत्रोपेक्षको मुनिः
कस्य वा बृहति मेता
आत्मा रामः समभ्यस
श्रीसुतुवाच आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्ति
नित्यं भूतगुणो हरि
हरेर्गुणाक्षिप्तमति
भगवान् बादरायणे अभ्यगान् महदाख्यानम्
नित्यं विष्णु जनप्रिय
परीक्षितोऽथ राजर्षे
जन्म कर्म विलापनम्
संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्
यदा मृधे कौरवसिंह
शिवतो विगतिं गतेषु बोलिए
यदा मृदे कौरव सिञ्चयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु
यदा मृदे कौरव सिञ्चयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु
यदा मृधे कौरसृजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु
व्रीकोदराविद्वगदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
क्रोधराविदगदाभिमर्श भग्रोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
व्रीकोदराविद्वगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
क्रोधराविदगदाभिमर्श प्रक्रोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
यदा मृदे कौरव सिञ्चयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु
यदा मृदे कौरसृजयानां वीरेश्वयो वीरगतिं गतेषु
व्रीकोदराविद्वगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
क्रोधराविद्वगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण विं बफल धरोष्ठा पूर्णे कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने हरे कृष्ण तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 7 दिवसीय भागवत सप्ताह के द्वितीय दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले सत्र में हम सब ने गरुड़ पुराण के द्वारा जीव की गति का वर्णन किया और सुना। तत्पश्चात किस प्रकार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का पुत्र धुंधुकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करके धुंधुकारी नाम का प्रेत भगवान का पार्षद बन गया। भगवान वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, धुंधुकारी जैसा महाखल महापापी जो प्रेत योनि में था, इतना बड़ा प्रेत और पापी यदि भागवत सप्ताह सुनकर भगवान के धाम में जा सकता है, तो फिर बहुत सुंदर शरीर धारण करने वाले मनुष्य भागवत सप्ताह सुनकर क्यों भगवत धाम को प्राप्त नहीं है। निश्चित यदि यह कानों से भागवत सप्ताह का श्रवण किया जाए तो भगवान का धाम हमें प्राप्त हो सकता है। यह भागवत परम हंस संहिता है और यह भागवत मृत्यु से बचाने वाला ग्रंथ है। आइए हम हमारी मृत्यु को सवारे इस भागवत सप्ताह का श्रवण करके। भागवत कथा सुनने से पहले सुनने वाले सभी भक्तों को भागवत की महिमा के बारे में जानना होगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु की हमें महिमा नहीं पता है तो उस वस्तु की वैल्यू हम नहीं करते हैं। जब तक विषय वस्तु के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, विषय वस्तु की महिमा नहीं पता है, तब तक उस विषय वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। तो भागवत श्रवण करने से पहले भागवत की महिमा जानना बहुत आवश्यक है। वैसे तो भगवान के भक्त भागवत की महिमा गाते रहते हैं, परंतु स्कंद पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु अपने मुख कमल से ब्रह्मा जी को भागवत की महिमा सुनाते हैं। भगवान जब बोलते हैं तो उसमें बहुत वजन होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ पर ब्रह्म भगवान से कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, श्रीमद भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। श्रीमद भागवतम नाम का पुराण जो समस्त लोकों में विख्यात है, समस्त लोकों में विख्यात श्रीमद भागवत पुराण यदि कोई सुन लेता है तो वह मुझे प्रिय बन जाता है, वो मेरा प्रिय हो जाता है। सुनिया श्रद्धया युक्तो सम संतोष कारण। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए और ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी कथा सुनो, भागवत ग्रंथ का श्रवण करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर जो मनुष्य भागवत पुराण का नित्यम पाठ करता है, कहते हैं प्रत्यक्षरम भवेत तस्य। भागवत पुराण के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षर पढ़ने पर कितना फल प्राप्त होता है, कहते हैं कपिला दानजम फल। कई प्रकार की गाय होती है, गैया, उनमें से एक गाय का नाम है कपिला गाय। भागवत का एक शब्द पढ़ने से एक कपिला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले हम सब लोगों ने भागवत के श्लोकों का शब्द का स्वादन किया। इतना ही नहीं, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते श्रुणुयाद्यतु गोस्त्रम फलम लभे। यदि कोई भागवत का पूर्ण श्लोक पढ़ ले तो कितना फल प्राप्त होता है, गो सहस्त्रम फल, 100 गाय दान करने का फल मात्र भागवत के एक श्लोक पढ़ने से प्राप्त होता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण भागवत की महिमा बताते कहते हैं, यह पठे प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः। हे ब्रह्मा, यदि कोई व्यक्ति भागवत ग्रंथ पढ़ता है तो केवल भागवत ग्रंथ पढ़ने से बाकी के सभी पुराणों के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। हे ब्रह्मा जी, जहां पर मेरी कथा होती है निश्चित वहां पर समस्त वैष्णव उपस्थित होते हैं। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है, जब भगवान श्री रामचंद्र अवधपुरी में रहने वाले समस्त लोगों को लेकर, अपनी समस्त प्रजा को लेकर साकेत धाम में जा रहे थे, तब हनुमान जी भी तैयार हो गए भगवान के साथ जाने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप मेरे साथ मत चलो, आप यहीं पर रहो और यहां रहकर संसार के लोगों का उद्धार करो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, आपके बिना यह हनुमान अधूरा है, आपके बिना मैं मर जाऊंगा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान इस जगत में रहकर जहां कहीं भी मेरी कथा होती है उस कथा में जाकर बैठ जाना, तुम मेरा मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। जहां पर मेरी कथा होती है वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। तात्पर्य यह है, जहां पर भागवत कथा होती है वहां पर बड़े बड़े वैष्णव आते हैं और विराजमान होते हैं, हनुमान जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि। और भगवान यहां तक कहते हैं कि जहां पर मेरी कथा होती है वहां पर मैं समस्त देवताओं को लेकर उपस्थित हो जाता हूं। त्रिदशा, कितने देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे, परंतु केवल भागवत कथा सुन लीजिए समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान यहां तक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनने के लिए घर से चलता है तो घर से जितना कदम भागवत कथा सुनने के लिए बढ़ाता है, भगवान कहते हैं एक एक कदम पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और भागवत के रचयिता भगवान वेद व्यास जी यहां तक कहते हैं कि भागवत सुनने की तो बहुत बहुत महिमा है, परंतु हृदय में भागवत सुनने की मात्र इच्छा हो जाए, केवल इच्छा हो जाए कि मुझे भागवत कथा सुनना है, भागवत कथा सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। सत्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुशुष भी तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं जिस क्षण हम भागवत सुनने की इच्छा करते हैं। और वास्तव में भागवत सुनने वाले भक्तों को भगवान अपने हृदय में कैद करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं। किसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं अससत मम जन उर्वस कैसे लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे लोभी अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखता है, वैसे ही भगवान भागवत सुनने वाले भक्तों को अपने हृदय में बंद करके रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भागवत सुनने पर बहुत बहुत फल प्राप्त होता है, इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि यह सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत कथा का श्रवण करें। और भागवत कथा श्रवण करने के लिए श्रोताओं की कुछ योग्यता होनी चाहिए, और श्रोताओं की सबसे पहली योग्यता है भागवत सुनने की इच्छा। भगवान हमारी इच्छा देखते हैं और इच्छा से भगवान हमें भागवत के पास पहुंचाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि तीन प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, श्रयोता और सोता। श्रोता का अर्थ होता है कि वास्तविक जो भागवत सुनने के लिए आए हैं, और सुंदर श्रोता में चार प्रकार होते हैं। सबसे पहली प्रकार का श्रोता, अच्छे श्रोता में एक प्रकार के श्रोता चातक के समान होते हैं। चातक एक पक्षी है और चातक का स्वभाव है कि स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए पानी के बूंद को ही ग्रहण करता है, और वह भी जमीन से यदि वह पानी स्पर्श हो जाए तब भी वह ग्रहण नहीं करता है। स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए पानी को डायरेक्ट अपने मुंह में ग्रहण करता है, अन्यथा वह किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। एक बार मर जाता है परंतु अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। तो सुंदर श्रोता में चातक के समान जो श्रोता होते हैं वे इस भागवत सत्ता से जो भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं उसी को ही स्वीकार करते हैं, और बाकी की कुछ भी वस्तु से दी जाए तो वह स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी प्रकार का श्रोता है हंस श्रोता। हंस का स्वभाव होता है, हंस को पानी और दूध को मिलाकर दे दो तो हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को पी जाता है, उसमें ऐसी शक्ति होती है। तो सुंदर श्रोता में जो हंस के समान श्रोता है, हो सकता है कथाकार के द्वारा कुछ गलती भी हो जाए बोलने में, परंतु हंस श्रोता गलतियों को दोष को छोड़ देते हैं और गुण को स्वीकार कर लेते हैं। भागवत में सुंदर श्रोता में तीसरे प्रकार के श्रोता गिनाते हैं शूक नाम के श्रोता। शूक का अर्थ होता है तोता। जैसे तोता को आप कुछ कान में कह दीजिए, रटा दीजिए, तो फिर सबके सामने वो बोलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जिस श्रोता का स्वभाव तोता जैसा है वे कथा ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद जगत में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और यह सबसे अच्छा श्रोता माना गया है। और चौथी प्रकार का सुंदर श्रोता है मीन श्रोता। जैसे मछली की आंख कभी बंद नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सुंदर श्रोताओं में कुछ श्रोता ऐसे हैं जिसकी आंख कभी बंद नहीं होती, बिल्कुल आंख खोलकर और कान खोलकर एक नजर से देखकर और सुनते हैं, इसे मीन श्रोता कहा जाता है। तो यह है अच्छी प्रकार के सुंदर श्रोता। और दूसरी क्वालिटी के जो श्रोता है उसे श्रोता कहा जाता है। श्रोता अर्थात सुपारी काटने के लिए जो कैंची आती है उसे श्रोता कहा जाता है, काटने का काम करते हैं। ये श्रोता नाम के श्रोता यही देखने के लिए आते हैं कि यह कथाकार कितनी भूल करते हैं, केवल भूल को पकड़ने के लिए आते हैं। और उसका दृष्टांत दिया गया है ऊंट के साथ। आपने देखा होगा ऊंट जो होता है वो कांटे वाले वृक्ष में कांटे वाले पत्ते को खाता है और बहुत आनंद का अनुभव करता है। वास्तव में वह आनंद उस पत्ते में और कांटे में नहीं है, वह कांटा उसके मुंह में लग रहा है और उसके मुंह से जो खून निकल रहा है वह उसे मीठा लगता है। तो वास्तविक फल छोड़कर यह ऊंट नाम के श्रोता कांटे खाते हैं। कथा में जो सुंदर सिद्धांत और बातें उसे छोड़कर केवल भूल पकड़ते हैं, चलो ये भी ठीक है। परंतु थर्ड क्वालिटी के श्रोता कौन है? कहते हैं सोता। जो कथा में आकर केवल सोते रहते हैं, यहां कथा प्रारंभ हुई वहां सोना प्रारंभ हुआ। हमारे इस्कॉन में एक भक्त बहुत ही सुंदर कहते हैं कि मेरे पास एक सुलाने का मंत्र है। किसी व्यक्ति को यदि सुलाना हो तो बहुत सुंदर मंत्र है। क्या है? कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही लोगों को पता चला कि भागवत कथा शुरू हो रही है, वहां सोना शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं कि मेरे पास सबको बुलाने का भी मंत्र है। व्यक्ति कहीं भी हो, मैं उस मंत्र का उच्चारण करूं तो वो आ जाता है। बोले कौन सा मंत्र? कहते महाप्रसादे गोविंदे। प्रसाद हो गया है, आ जाइए। सब नींद उड़ जाएगी और सब लोग आ जाएंगे। तो भक्तों, न तो हमें श्रोता बनना है, न तो हमें सोता बनना है, हमें श्रोता बनना है। तो श्रोता बनकर भागवत कथा का श्रवण करेंगे। यह भागवत कथा की तीन परंपरा है। यह भागवत कथा की सर्वप्रथम परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु और महेश को यह भागवत सुनाया था। यह भागवत कथा की दूसरी परंपरा है, भगवान शंकरचंद ने सनत कुमार को यह भागवत सुनाया है। संत सनत कुमार ने सांख्ययान मुनि को यह भागवत सुनाया है। और सांख्ययान मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को भागवत सुनाया है। और बृहस्पति जी ने वेद व्यास जी के पिता पराशर जी को, और पराशर जी ने पुलस्त्य ऋषि को, और पुलस्त्य जी ने मैत्रेय मुनि को, और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भागवत सुनाया। परंतु भक्तों, हम जिस भागवत को सुन रहे हैं, हमारे पास जो भागवत है, वह यह तीसरी परंपरा वाला भागवत है। और वह भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो भागवत सुनाया, उस भागवत में शत कोटि 100 करोड़ श्लोक थे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वैकुंठ में जो भागवत है उसमें 100 करोड़ श्लोक है। परंतु कलयुग के जीव की कैपेसिटी के अनुसार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में भागवत का निर्माण किया। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भागवत सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी को, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत का ज्ञान दिया। तो आइए हम सब उस जगह पर चलते हैं जहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होकर बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। कहते नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। क्यों एकत्रित हुए थे? 88,000 ऋषि मुनियों को पता चला कि कलयुग आ रहा है, और कलयुग में बहुत दोष है। इस कलयुग के दोषों से बचने के लिए हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। तो नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में आए, और नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में आकर यज्ञ का अनुष्ठान किए। और वह यज्ञ कितने सालों तक चलने वाला था? कहते हैं सहस्त्रम सममासत, 1,000 वर्ष का यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे थे। 1,000 वर्ष तक यज्ञ चलाने वाले थे। उतने में यज्ञ प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होकर दस पंद्रह दिन जब बीते तो सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत गोस्वामी आ रहे हैं। यह सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, जिसका वास्तविक नाम है उग्र शवा सूत। तो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनकर आ रहे थे। जैसे ही 88,000 ऋषि मुनियों को पता चला तो एकदा तु मुनयम प्रातर्भूत हुताग्नयम सत्कृतम सूत मासिनम प्रपच्छु रिद मादरात। सूत गोस्वामी जैसे ही नैमिषारण्य में आए तो सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ बंद कर दिए, क्योंकि ये यज्ञ तपस्या इत्यादि तब तक करना होता है जब तक भागवत कथा न सुनी जाए। यदि भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है तो यज्ञ हवन तपस्या सब कुछ बंद कर देना चाहिए। शास्त्र हमें सिखाता है यज्ञ बंद किया, सूत गोस्वामी आए और सूत मासिनम बहुत सुंदर आसन के ऊपर विराजमान किए और सूत गोस्वामी की पूजा किए और पूजा करने के बाद प्रपच्छु ईद मादरात बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। अब जब सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछना हुआ तो 88,000 ऋषि मुनि एक साथ प्रश्न पूछने लगे। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि आप सब लोग एक साथ प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं कैसे किस किन किन लोगों का उत्तर दूं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर बैठे हैं और सब लोग एक साथ प्रश्न पूछने लगे जैसे मंत्रालय में, तो किस प्रकार उत्तर दिया जाए। तो 88,000 ऋषि मुनियों की मीटिंग हुई कि काम करते हैं हम 88,000 ऋषि मुनियों में जो ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है ऐसे शौनक ऋषि को लीडर बनाते हैं और यदि किसी को भी प्रश्न हो तो शौनक ऋषि को पूछेंगे और शौनक जी सूत गोस्वामी को पूछेंगे। और वास्तव में 88,000 ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ थे शौनक जी। ये शौनक जी का और एक नाम है और वो नाम है भार्गव, क्योंकि भृगु वंश में इनका जन्म हुआ था इसलिए इसे भार्गव कहा जाता है। और जैसे सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी कथा करने में श्रेष्ठ है वैसे शौनक ऋषि कथा सुनने में श्रेष्ठ है। और शौनक जी की भक्ति यहां हमें पता चलती है। जब ये 88,000 ऋषि मुनि 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए तब सभी लोग चिंतित हो गए, चिंता करने लगे कि 1,000 वर्ष तक हमें यहां पर रहना है, हमारा भोजन खाना पीना और कपड़े की व्यवस्था कैसे होगी। हम सब लोग घर बार छोड़कर आ गए हैं, हमें भोजन कहां से मिलेगा, कपड़े कहां से मिलेंगे। तब यह शौनक जी जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था 88,000 ऋषि मुनियों को कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों भोजन आच्छा दने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। हे वैष्णवो हे ऋषि मुनियों भोजन और कपड़े पहनने की चिंता तुम वृथा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हम जिसको प्रसन्न करने के लिए आए हैं उनका एक नाम है विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ होता है विश्व का भरण पोषण करने वाला, जो प्रभु जो भगवान पूरे विश्व का पूरे जगत का भरण पोषण करता है उस भगवान के लिए हम यहां पर आए हैं तो क्या वह हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे। अवश्य विश्वास होना चाहिए। आज भी हमें ऑफिस में इसलिए जाना पड़ता है, हमें काम धंधा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम पर हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। भक्तों यदि भगवान पर विश्वास आ जाए तो भोजन और कपड़े भगवान हाथ में लेकर आपको पहुंचाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में हजारों प्रमाण है। बताइए सुदामा जी किसी ऑफिस में गए थे कमाने के लिए, कभी किसी से कुछ मांगे भी नहीं थे और कभी किसी ऑफिस में नहीं गए। कृष्ण पर विश्वास था। उनके जीवन में परीक्षा हुई, परंतु विश्वास होने के कारण भगवान ने अपने जैसी द्वारका ही दे दी। भक्तों, भगवान आज से 5000 वर्ष पहले जितने कृपालु थे उतने आज भी हैं, परंतु 5000 वर्ष पहले जो लोग भगवान पर विश्वास रखते थे आज उस विश्वास की कमी है। शौनक जी का विश्वास था भगवान पर और सबको समझाए विश्वास रखो, भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार शौनक जी की बहुत महिमा है और ऐसे शौनक जी सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अब आज से यहां से हम भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री शौनक उवाच। शौनक उवाच, उवाच का अर्थ होता है शौनक जी ने कहा। क्या कहा? निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण शुद्वान तद अभिप्रेतम कीम कीम तत कीम करो द्विभो। शौनक जी कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, नारदे निर्गते भगवान बादरायण, हे सुत गोस्वामी, नारद मुनि के निर्गते, नारद मुनि के चले जाने के बाद भगवान बादरायण ने क्या किया? बादरायण का अर्थ होता है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का एक नाम है बादरायण। अच्छा, वेद व्यास जी को बादरायण क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद व्यास जी जहां पर रहते हैं वहां पर कई सारे बेर के वृक्ष हैं और वेद व्यास जी जिस पेड़ के नीचे वेद व्यास जी की कुटिया थी वो पेड़ बेर का वृक्ष था। गुजराती में बोर कहते हैं। तो कई सारे बेर के वृक्ष थे, तो बेर के वृक्ष का आयन बेर के वृक्ष के नीचे वे रहते थे, सोते थे, इसलिए वेद व्यास जी को बादरायण कहा जाता है। तो ऐसे वेद व्यास जी नारद मुनि के जाने के बाद क्या किए? अब यहां पर प्रश्न होता है कि नारद मुनि क्यों आए थे और फिर क्यों चले गए? तो अगले तीन अध्याय में कथा है, बहुत सुंदर कथा है। वेद व्यास जी जो भगवान के शक्तावेश अवतार है, इस संसार में कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए बहुत सुंदर विचार वेद व्यास जी के मन में आया है। वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग प्रायण अल्प आयुष्य सभ्यो कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में बहुत कम बुद्धि वाले लोग हैं, कम आयु वाले लोग हैं, इसलिए जितने भी वेद शास्त्र हैं ये सब शास्त्रों का संकलन करना होगा। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि द्वापर युग तक जितने भी वेद थे ये सभी वेद श्रुतियों में थे, लिखित रूप में नहीं थे। तो द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी ने सोचा कि श्रुति में रहने वाले वेदों को लिखना होगा, लिपिबद्ध करना होगा, तब जाकर कलयुग के लोग इसे पढ़कर समझ पाएंगे। तब कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी वेदों का विभाजन किए, वेदों का व्यास किए और चार वेद का निर्माण किए, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और इस वेद को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने उपनिषद की रचना की और कुल मिलाकर 108 उपनिषद की रचना की। इतना ही नहीं, कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं को वेदों के ऊपर अधिकार नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए वेद व्यास ने महाभारत का निर्माण किया जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। वेद व्यास ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए बहुत बहुत शास्त्र लिखे। इतना ही नहीं, वेद व्यास ने 17 पुराण की रचना की, 4 वेद, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत और 17 पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि 17 पुराण की रचना, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, एक से एक पुराण की रचना। परंतु आश्चर्य की बात यह थी, कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास ने इतना लिखा परंतु फिर भी वे स्वयं संतुष्ट नहीं थे। कुछ अधूरा सा लग रहा था, कुछ कमी लग रही थी। तब वेद व्यास जी अपने आश्रम में बहुत दुखी होकर, मन विचलित था, हृदय में दुख का, असंतोष का अनुभव हो रहा था, बैठे थे। भगवान है, भगवान के शक्तावेश अवतार है, लेकिन फिर भी समझ नहीं सके कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों असंतुष्ट हूं। तब उस समय भगवान के मनो अवतार नारद मुनि आकाश के मार्ग से बद्री का आश्रम में, जहां पर वेद व्यास जी बहुत खिन्न मन बैठे थे, वहां पधारे। जैसे नारद मुनि वेद व्यास जी के पास आए, तुरंत जैसे एक दर्दी एक रोगी अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में दे देता है, वैसे दुखी वेद व्यास जी अपना हाथ नारद मुनि के अपने गुरु के हाथ में रख दिए और कहने लगे, गुरु जी मैं क्यों असंतुष्ट हूं, जीव के कल्याण के लिए मैंने क्या कुछ नहीं लिखा, परंतु स्वयं मेरा कल्याण नहीं हुआ। बताओ नारद जी, मेरी रचना में क्या कमी रह गई है, मैंने ऐसी कौन सी चीज बाकी रखी है जिससे मुझे संतुष्ट नहीं हो रही। तब नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो, आप तो सब कुछ जानते हो और आप तो ब्रह्म को जानने वाले हो, आत्मा को जानने वाले हो और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान आपने समस्त वेदों में भर भर के लिखा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, समस्त वेदों में और 17 पुराण में, उपनिषद में आपने ब्रह्म और आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा, परंतु बुरा न लगे तो वेद व्यास जी आपको एक बात कहूं, विद्वान लोग ऐसी बातों को कौवे का तीर्थ मानते हैं, विद्वान लोग ऐसी बातों को पसंद नहीं करते हैं जिस ग्रंथ में भगवान का गुणगान न हो। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो और कलयुग के जीवों का कल्याण करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत की रचना करो। जब तक भागवत की रचना नहीं होगी तब तक आप भी संतुष्ट नहीं होंगे और कलयुग में आने वाले लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के जीव का उद्धार करना चाहते हो तो भागवत ग्रंथ की रचना करो और भागवत ग्रंथ में भगवान के गुणगान का वर्णन करो। भगवान के गुणगान कैसे हैं? नारद मुनि कहते हैं त्रिभुवन को पवित्र करने वाले भगवान के गुणगान हैं। कृष्ण का नाम एक व्यक्ति यदि ले लेता है स्वयं पवित्र हो जाता है, अपने साथ रहने वाले पूरी पृथ्वी को पवित्र करता है। इतना ही नहीं, तीनों भुवन को पवित्र करने वाला भगवान का नाम और भगवान की लीला है। और त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान की लीला तो आपने लिखी ही नहीं है, और जो नहीं लिखना था वह सब कुछ लिख दिया। जब तक भागवत की रचना नहीं होगी, जब तक भागवत ग्रंथ नहीं लिखोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा और कलयुग के जीव का कल्याण नहीं होगा। मैं क्या बताऊं वेदव्यास जी, दूसरे की बात छोड़ो, मैं स्वयं मेरी व्यथा और कथा कहता हूं। सर्वप्रथम जन्म हुआ था ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने के लिए कहा, विवाह करने के लिए कहा, परंतु मैंने ना कह दिया, क्योंकि भगवान का भजन करो या पत्नी और बच्चे का पालन पोषण करो, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। अमृतमयी भगवान की भक्ति को छोड़कर यह विषमयी भोग को चाहने वाला तो मूर्ख है। मैंने मेरे पिता ब्रह्मा को विवाह करने के लिए जब ना कहा तो मेरे पिताजी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम शूद्र हो जाओ। तब मेरा दूसरा जन्म द्रुमिल गोप के घर में हुआ। जन्म लेते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। नारद मुनि अपनी कथा कह रहे हैं, जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां सब लोगों के घर में जा जाकर उनके सेवा करके, उनके घर पे कुछ काम करके अपना गुजरान चलाती थी, परंतु सौभाग्य की बात चतुर्मास का समय था, पवित्र मास चल रहा था, और उस समय मेरी माँ को साधुओं की सेवा करने का मौका मिला। तब मेरी माँ के साथ में जाता था, मेरी माँ साधुओं की सेवा करती थी, मैं भी साधुओं की मंडली में बैठता था। और वास्तव में जहां पर वास्तविक साधु होते हैं, भगवान कहते हैं जहां पर साधु होते हैं वहां पर मेरी कथा ही होती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनम कथा, जहां पर मेरे भक्त मिलते हैं वहां पर मेरी कथा के अलावा कुछ नहीं होता। तुष्यन्ति च रमन्ति च गीता में भगवान कहते हैं, मेरे भक्त मेरी कथाओं में आनंद लिया करते हैं। मेरी माँ उस साधुओं की सेवा करती थी और मैं साधुओं की मंडली में बैठकर भगवान की कथा सुनता था। और मेरी माँ जब साधुओं को भोजन खिलाती थी और वह भोजन जब बच जाता था, साधुओं का जूठन भोजन मैं लेता था। वेदव्यास जी उच्चिष्ट लेपा अनुमोदितो द्विजे, उस साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुनकर और उन लोगों का उच्चिष्ट खाकर आज मैं नारद बना हूं। और भगवान ने ऐसा शरीर मुझे दिया है, जब चाहो तब मैं जहां भी जा सकता हूं और 2400 घंटे इस वीणा पर भगवान का नाम गाते रहता हूं। ये क्यों हुआ? भगवान की कथा सुनकर। वास्तव में जीवों का कल्याण चाहते हो तो वेदव्यास जी भागवत ग्रंथ की रचना करो। बस भागवत ग्रंथ की रचना करने का उपदेश देकर नारद मुनि निर्गते, नारद मुनि निर्गते माने चले गए। तब सोनक जी प्रश्न पूछते हैं, निर्गते नारद मुनि के चले जाने के बाद भगवान बादरायण बादरायणी वेदव्यास जी ने क्या किया? शुद्वांस तत अभिप्रेतम ततः किम करोत विभु। यदि आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, ज्ञान रखते हो, तो श्लोक में वेदव्यास जी के लिए तीन विशेषण दिए गए हैं। वेदव्यास जी को भगवान कहा गया है, वेदव्यास जी को विभु कहा गया है, और वेदव्यास जी को बादरायण कहा गया है। जब श्रेष्ठ लोग कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों में बहुत रहस्य होता है। देखिए यहां पर कौन सा रहस्य प्रकाशित होता है? वेदव्यास जी के तीन विशेषण। सबसे पहले भगवान, भगवान का अर्थ होता है सर्वज्ञ ज्ञानी। वेदव्यास जी ज्ञानी थे। तत्पश्चात बादरायण, बादरायण का अर्थ होता है कि वेद व्यास जहां पर रहते थे वहां पर केवल बेर के वृक्ष थे और वेद व्यास जी केवल बेर खाकर अपना जीवन चलाते थे। इसका अर्थ है वेद व्यास जी तपस्या करते थे। तो बादरायण का एक अर्थ होता है तपस्वी। वेद व्यास जी ज्ञानी थे, बादरायण से वेद व्यास जी तपस्वी थे और विभु वेद व्यास जी लिखने में प्रवर थे। वास्तव में शास्त्र वही लिख सकता है जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है और जो लिखने में प्रवर है। जब इस प्रकार से शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि नारद जी के चले जाने के बाद वेदव्यास जी ने क्या किया, तब सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर सूत गोस्वामी इसका उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री सूत उवाच। सबसे पहले सूत गोस्वामी क्यों प्रसन्न हुए? श्रोता और शिष्य जब प्रश्न पूछते हैं तो गुरु और वक्ता बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रश्न वही पूछ सकता है जो कुछ जानता है। न जानने वाले तो केवल बेल की तरह बैठे रहेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। प्रश्न वह पूछता है जो कुछ जानता है। तो गुरु और वक्ता जब शिष्य और श्रोता प्रश्न पूछते हैं तब बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर सूत गोस्वामी नारद मुनि के चले जाने के बाद वेदव्यास ने क्या किया, इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धनम। हे शौनक जी, ब्रह्म नद्या सरस्वत्या, ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले वेद व्यास जी, वेद व्यास जी जहां पर रहते हैं वहां सरस्वती नदी बहती है और यह सरस्वती नदी और कुछ नहीं गंगा नदी की एक धारा है। तो सरस्वती नदी के तट पर आश्रम पश्चिमी तटे, सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर वेद व्यास जी का आश्रम था। अब आश्रम का अर्थ क्या होता है? आज इस कलयुग में यदि हम आश्रम शब्द बोलते हैं तो सोचते होंगे बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, बहुत बड़ा भव्य आश्रम बनाए होंगे। आश्रम का अर्थ होता है आ माने सम्यक, पूर्ण पूर्ण, और श्रम का अर्थ होता है मेहनत। जहां पर भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण पूर्ण श्रम होता है उसे आश्रम कहा जाता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए किया गया श्रम वे आश्रम है। और इस आश्रम के चार विभाजन भगवान ने भगवत गीता में किए हैं। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, चार प्रकार के आश्रम है ब्रह्म, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम में से व्यक्ति किसी भी आश्रम में क्यों न हो, उसका एक ही काम होना चाहिए कि भगवान के बारे में जानने के लिए श्रम करे, प्रयत्न करे। वास्तव में भगवान ने बहुत सुंदर नियम बनाया है और भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। भगवान की व्यवस्था के अनुसार यदि हम रहते हैं तो बहुत सुखी रहेंगे, परंतु भगवान की बात को हम सुनते ही नहीं है तो मानेंगे कैसे? भगवान ने आश्रम बनाया है गृहस्थ आश्रम, और प्राय हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम क्यों है? गृहस्थी में रहकर पूर्ण पूर्ण श्रम भगवान को प्राप्त करने के लिए करने के लिए, इसलिए गृहस्थी है। परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए हम श्रम नहीं करते हैं। श्रम अवश्य करते हैं, परंतु वह श्रम धन एकत्रित करने के लिए करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि धन नहीं कमाना चाहिए। जब तक यह शरीर जी सके तब तक सबको धन कमाना चाहिए, परंतु जरूरत से ज्यादा धन बहुत बड़ा पतन का कारण है। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में बहुत सुंदर कहते हैं कि अति जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे अति धन हो या कुछ भी, क्योंकि अति रूपात यथा सीता। अति रूप होने के कारण सीता का हरण हो गया, नहीं तो कौन लेने के लिए आता। अति गर्वेण रावण, अति गर्व होने के कारण रावण मारा गया। अति दानात बलि बंधो, अति दान करने के कारण बलि बेचारा बंध गया। इसलिए अति सर्वत्र वर्जय, अति को त्याग देना चाहिए। तो ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे, ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर वेदव्यास जी का आश्रम था, और इस आश्रम का नाम क्या था? कहते सम्या प्राश इति प्रोक्त। वेदव्यास जी के आश्रम का नाम था सम्या प्राश, और ऋषि नाम सत्र वर्धन। उस आश्रम में क्या होता था? कहते उस आश्रम में ऋषि नाम बहुवचन में है, कई सारे ऋषि मुनियों का सत्र चलता था। वेदव्यास जी के आश्रम में एक मिनट भी कोई आया न हो ऐसा नहीं बनता था। ऋषि नाम बहुत बहुत ऋषि मुनि वेदव्यास जी से पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे, और सत्र चलता था। सत्र का अर्थ होता है एक जगह पर बैठकर भागवत कथा सुनना या ज्ञान प्राप्त करना, जिसका कभी अंत न हो। जैसे यहाँ पर जो हम कार्य कर रहे हैं इसे भी भागवत सत्र कहा जाता है, और इस भागवत सत्र का कभी अंत नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पर केवल 7 दिन के लिए हो, फिर यहाँ के बाद दूसरी जगह पर होगी। नित्यम भागवत सेवा। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी के आश्रम में नित्यम भागवत कथा ज्ञानमयी गंगा चलती रहती थी। परंतु नारद मुनि के जाने के बाद वेदव्यास जी सभी को कह दिए कि हे शिष्यगणों, अब कुछ दिन के लिए आप हमारे आश्रम में मत आइएगा। सुत गोस्वामी कहते हैं तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री षंड मंडिते आसीनो अपुष्य प्रणीतद्यो मनस्वयं। स्वयं का अर्थ है अकेले वेदव्यास जी और कोई नहीं। वेदव्यास जी अकेले अपने आश्रम में क्या किए? अपने हाथ में अपनी अंजलि में पानी लेकर आचमन किए, और आचमन करने के बाद वेदव्यास जी समाधि में स्थित हुए, समाधि में बैठे। और समाधि कैसी थी? कोई ज्योति का ध्यान नहीं कर रहे थे या किसी बाबा और बापू का ध्यान नहीं कर रहे थे। भागवत में लिखा है, सूद गोस्वामी कहते हैं भक्ति योगेन मनसी, वेद व्यास जी भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तो वेद व्यास जी ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, और समाधि में भक्ति योग के द्वारा वेद व्यास जी का मन स्थिर हुआ। वास्तव में हमारा मन बहुत चंचल है, और सब लोग चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए, कि हमारे मन में प्रायः ऐसे ऐसे विचार आते हैं। कभी कभी हमें शर्म आ जाती है कि मेरा मन ऐसा सोच सकता है, बहुत भागते रहता है। और भक्तों मन एवं मनुष्य नाम, मन एक ऐसी वस्तु है, यदि इसे वश में न किया जाए तो यह मन नरक में ले जाएगा, और यदि इसे वश में कर लिया जाए तो यही मन हमें वैकुंठ में ले जा सकता है। मन एवं मनुष्य नाम कारणं बंधन मोक्षयो, ये मन ही जीव के बंधन का कारण है, और यह मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। तो मन को वश में करना चाहिए, और प्राय सब लोग मन को वश में करना चाहते हैं और मन को वश में करने के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, परंतु बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयास, प्रैक्टिकल चीज कर रहे हैं। यदि मन को वश में करना है तो भक्ति योगेन मनसि, भक्ति योग करना है। और किसी योग से मन वश में हो या न हो, परंतु भक्ति योग से तो निश्चित मन वश में होता है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणी हिते मन, इतना ही नहीं, भक्ति योग से वेदव्यास जी का जो मन था वो शुद्ध हो गया। यदि प्रश्न हो तो क्या वेदव्यास जी का मन शुद्ध नहीं था? वेदव्यास जी के मन में भी कुछ कचरा था? वेदव्यास जी का मन शुद्ध हुआ इसका अर्थ यह है कि वेदव्यास जी के मन में उद्विग्नता थी कि ये शिष्य को मैं ये सिखाऊंगा, इतने शिष्य को यह सिखाऊंगा, इतने शिष्य को यह सिखाऊंगा, प्रयास में जुटे थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण की समाधि के कारण वेदव्यास जी का मन शांत हुआ, शुद्ध निर्मल हुआ। और जब वेदव्यास जी का मन निर्मल हो गया तब क्या हुआ? अपश्यति पुरुषम पूर्णम, वेदव्यास जी ने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अपने मन में किया, समाधि भगवान का दर्शन वेदव्यास जी को हुआ। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारी वैजयंती माला धारण किए हैं, हाथ में बंसरी है। ऐसे श्री भगवान जो पूर्ण पुरुष है, ऐसे भगवान का दर्शन किया और पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद मायां च तदुपाश्रयम्। वेदव्यासी समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए और कृष्ण का दर्शन करने के बाद वेदव्यास जी माया का दर्शन किए। इस संसार में सभी जीवों को दुखी करने वाली माया का दर्शन किया। देखिए प्रश्न हो सकता है कि वेदव्यास जी भी माया का दर्शन किए, हम भी कर रहे हैं और हम तो माया का दर्शन करके उसमें फंस जाते हैं, तो वेदव्यास जी नहीं फंसे? तो भक्तों वेदव्यास जी माया में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति योग के द्वारा भगवान का दर्शन किया था। जो लोग भक्ति योग करते हैं और भक्ति योग के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं वह व्यक्ति माया के बीच में रहकर भी माया से स्पर्श नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। वेदव्यास जी ने माया का दर्शन किया। सूत गोस्वामी कहते हैं कि वो माया कैसी थी? यया सम्मोहितो जीव, ये कौन सी माया है? ये माया जीव को मोहित करने वाली है। चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु की आमी केने आमाय जार ताप त्रय, मैं कौन हूं और इस संसार में दुखी क्यों हूं, तीन ताप मुझे क्यों सता रहे हैं? तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, इस संसार में तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि माया तुम्हें सता रही है। कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। जीव जब भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाता है तब वो माया में बंध जाता है, फंस जाता है और माया में फंस कर जीव बहुत दुखी होता है, बहुत दंडित होता है। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्तम तत्कृतं चाभिपद्यते। कितना दुखी होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। ये माया दो प्रकार की माया है, एक माया को योग माया कहा जाता है और दूसरी माया है महामाया। यद्यपि ये दोनों भगवान की शक्ति है, योग माया आध्यात्मिक जगत में होती है और महामाया इस भौतिक जगत में होती है। और महामाया के द्वारा इस भौतिक जगत में सभी जीवों को दुखी किया जाता है। कुछ दुख का सैंपल मैंने आपको कल दिया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक से एक दुख माया के द्वारा मिलते हैं और संसार के लोग को इतना दुखी करती हैं, इतना दुखी करती हैं, कभी सुखी नहीं होने देती है। और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दृष्टांत देते हैं, राज दंड येन येन नदी दी छुपाए, जैसे राज दंड आज से 500,000 वर्ष पूर्व बड़े बड़े राजा महाराजा किसी अपराधी को जिस प्रकार दंडित करते थे, कैसे दंडित करते थे, कोई अपराधी यदि पकड़ा जाए तो राजा के सैनिक उसे नाव में बिठाकर बीच नदी में लेकर जाते थे और बीच नदी में चार पांच सैनिक राजा के दूत उनके बाल को पकड़कर नदी में डुबा देते और बाल के सहारे उसको बिल्कुल नदी में डुबा देते। वो तड़पने लगता, छटपटाने लगता, बाहर निकालो बाहर निकालो। जब अंतिम सांस बच जाए, मरने की अंतिम घड़ी आ जाए, तब उसे बाहर निकाला जाता। तब बाहर निकलकर चैन की सांस लेता। जैसे ही एक दो सांस लिया, तुरंत राजा के सैनिक उसे फिर से बाल के द्वारा नदी में डुबा देते। फिर से वो तड़पता, दुखी होता, चिल्लाता, बाहर निकालो बाहर निकालो, मरने की अंतिम घड़ी आ जाए तो फिर से उसे बाहर निकालो। ऐसे बार बार मृत्यु पर्यंत इस प्रकार से तड़पा तड़पा कर राजा के सिपाही उसे मार डालते थे। इस संसार की माया उसी प्रकार लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती। एक बार गोली देकर, एक बार शूट कर मार दे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यह माया तुरंत नहीं मारती है, जला जला कर तड़पा तड़पा कर मारती है। बताओ, एक झटके में कोई मर जाए तो इतना दुख नहीं होगा, परंतु जीवित व्यक्ति को जलाने वाली है यह माया। जैसे राज दंड दिया जाता, वैसे ही यह माया दंड देती है। संसार के लोग सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, क्या खाक सुखी हैं, रात दिन माया दुख देती है और उस दुख में कुछ क्षणिक सुख दे देती है तो हमें लगता है कि जीवन भर सुख मिले। और भक्तों, यह हमारा भ्रम है कि संसार में रहकर हम सुखी हैं, हम सुखी नहीं है। जैसे वो अपराधी को जब डुबाते थे और बाहर निकालते थे तो बाहर निकल कर क्या वह सुखी होता था? नहीं, उसके दुख की निवृत्ति होती थी। तो हम दुख निवृत्ति की स्थिति को सुख समझ सकते हैं। इस जगत में सुख नहीं है, माया के द्वारा 24 घंटा दुख दिया जा रहा है, परंतु माया के द्वारा कभी थोड़ा सा दुख कम हो जाए तो उस कम दुख वाली स्थिति को हम सुख समझ बैठते हैं। वास्तव में वो सुख नहीं है। बात समझ में आ रही है? यदि नहीं समझ में आ रही है तो एक दृष्टांत दूं आपको, और यह दृष्टांत आप बिल्कुल ठीक तरह समझ सकते हो क्योंकि यह ट्रेन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपको ट्रेन में सफर करनी है। यदि कोई बोरीवली में रहता है और बोरीवली में उसे उतरना है और वह व्यक्ति विरार ट्रेन में चढ़ गया है और वह भी शाम को 7-8 बजे। मरीन लाइन से कोई बोरीवली उतरने के लिए विरार फास्ट में चढ़ गया। आप तो जानते हो मरीन लाइन्स में ये बाजू से चढ़ना है, बोरीवली में वो गेट पर उतरना है। मरीन लाइन्स से चढ़ा है, चरनी रोड आया, ग्रांड रोड आया, तब तक तो ट्रेन फुल हो जाती है, यहां से भी पैक यहां से पैक। तब बांद्रा आता है, तब तो पूरा पैक, और उसमें भी कोई बोना व्यक्ति है तो फिर बेचारा बदबू ले लेकर वैसे ही मर जाता है। धीरे धीरे वह धक्का मुक्की कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि में सैनिक आगे बढ़ते थे, वैसे विरार की ट्रेन में धीरे धीरे। और आप अद्भुत ट्रेन है, इस ट्रेन के ऊपर यदि विचार किया जाए तो वैराग्य आ जाता है। ट्रेन में खड़े रहने वाले की स्थिति कैसी होती है? उसका पांव यहां पर होता है और मुंह यहां पर होता है, बिल्कुल हवा में होता है, हाथ कहीं और पांव कहीं और, धीरे धीरे करके, और उतने में विरार आता है और उस विरार में भी 3-4 हट्टे कट्टे लोग चढ़ गए और कह दिए किसको बोरीवली उतरना है। तब तो बोरीवली उतरने वाला आधा पानी पानी हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। लेकिन फिर भी धक्का मुक्की कर करके कर करके आगे आता है, दो तीन लोगों की गाली सुनता है और उसमें भी गर्मी की ऋतु है, पंखा बंद है, पसीने से लथपथ व शोर सुन सुन कर कैसे भी करके बोरीवली आता है और उसे भी कितना धक्का मुक्की करके लोगों की गाली सुनकर लोगों के धक्के के द्वारा उसे धड़ाम करके बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही वो स्टेशन पर उतरता है तब तब वह स्वर्ग के सुख का अनुभव करता है, करता है कि नहीं? तो भक्तों सोचो क्या यह सुख है, हम इसे सुख मानते हैं? अरे भाई, एक घंटे से हमें इतनी कंजेस्टेड स्थिति में रखा गया था तो फिर नॉर्मल स्थिति में हम आ गए तो उसे हम सुख मान बैठते हैं। वास्तव में वह सुख नहीं है, वह दुख की निवृत्ति है। इस जगत में सुख है ही नहीं, क्योंकि जगत बनाने वाले ने कहा है। जैसे यह माइक आहूजा कंपनी का माइक है, इस माइक के बारे में सबसे ज्यादा कौन जान सकता है? आप योगेश प्रभु क्या? इस माइक के बारे में सबसे ज्यादा आहूजा कंपनी वाले जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये माइक बनाया है। जिसने यह माइक बनाया है वही इस माइक के बारे में सबसे ज्यादा जान सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसने यह जगत बनाया है वही इस जगत के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। और जगत बनाने वाले ने भगवत गीता में ऐलान किया है कि मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। अर्जुन, यह जगत दुखा आलय है, दुखालय है। आलय का अर्थ होता है समुद्र। जैसे समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं होता है, वैसे ही इस जगत में दुख के अलावा और कुछ नहीं। माया के द्वारा बहुत बहुत दुख दिया जाता है, सताया जाता है। और इस संसार में सब लोग माया से मोहित है, या सम्मोहित हो। माया का अर्थ क्या है? माया का तत्व समझ लिए। माया का अर्थ तो बहुत होता है, परंतु प्रभुपाद जी इतना ही कहते हैं, माया वो है जो नहीं है। माया उसे कहा जाता है जो वास्तव में नहीं है। इस संसार के संबंध वास्तविक संबंध नहीं है, परंतु हम समझ बैठते हैं कि ये हमारे ही है, इसे माया का है। तो यया सम्मोहितो जीव, इस जगत के सब लोग माया में पड़े हुए हैं। अब देखिए वेद व्यास जी समाधि में बैठे हैं और ये सब कुछ समाधि में देख रहे हैं। पहले भगवान को देखे और फिर बाद में माया का दर्शन किए, और माया का दर्शन करके वेद व्यास जी बहुत दुखी हुए। अब वेद व्यास जी सोचने लगे कि इस जगत के लोगों को माया से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। वेद व्यास जी समाधि में माया से मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगे। इस संसार के सभी दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? तब वेद व्यास जी समाधि में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। यदि माया से मुक्त होना है तो अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए बिना व्यक्ति माया से मुक्त नहीं हो सकता। आप कहोगे आप तो कृष्ण के भक्त हो इसलिए कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, परंतु ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है। एक तो भागवत सामने दिख रहा है इसलिए आपको दिया गया है, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं। जैसे ये हम सब लोग इस माया के द्वारा दुखी हैं तो ये माया कौन क्या है? कहते हैं भगवान की शक्ति। और गीता में भगवान कहते हैं, देवी हेशा गुणमयी मम मारा माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये माया मेरी शक्ति है और इस माया को लांघना दुरत्यय बहुत मुश्किल है, तब क्या किया जाए? तो भगवान उपाय देते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मेरी भक्ति करता है, तो वो माया से पार हो सकता है। वेद व्यास ने देखा कि अनर्थ उपशमम साक्षात, अनर्थ को नष्ट करने के लिए, अनर्थ को मिटाने के लिए अधोक्षज की भक्ति ही करनी होगी। इस संसार के लोग अधोक्षज की भक्ति के द्वारा ही सभी अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। अनर्थ शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं, परंतु इसका अर्थ क्या होता है? अनर्थ मनुष्य जीवन के चार पुरुष पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। तो मनुष्य जीवन के पांच पुरुषार्थ में पुरुषार्थ संधि विच्छेद किया जाए तो होता है पुरुष अर्थ। तो अर्थ का अर्थ होता है मनुष्य जीवन के पांच पुरुषार्थ। क्या है पांच पुरुषार्थ? धर्म, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, माता की सेवा, पिता की सेवा, समाज की सेवा। फिर है अर्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये पांच चीज सबके पास होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है धन, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने पास धन होना चाहिए। फिर काम, शक्ति होनी चाहिए कार्य करने के लिए। और मोक्ष, उच्च लोक में जाने के लिए कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम, कृष्ण के साथ प्रेम। तो वास्तविक अर्थ यह पांच है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम। तो ये पांच अर्थ यदि कोई व्यक्ति माया में फंस जाता है तो यह पांच अर्थ को पूर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए पांच अर्थ जिसका पूर्ण नहीं होता है उसे अनर्थ कहा जाता है। मनुष्य जीवन के पांच पुरुष अर्थ है, पुरुषार्थ है, और जिसको ये पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होते हैं उसका अनर्थ है। तो ये पांचों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? भक्ति योग, योगे मनसि अनर्थ उपशमं साक्षात्। इस अनर्थ का उपशमन करने के लिए, इस अनर्थ को मिटाने के लिए अधोक्षज की भक्ति करनी होगी। अब आप कहेंगे ये अधोक्षज कौन है भाई? अक्ष का अर्थ होता है आंख और अध का अर्थ होता है पीछे। जो हमारी इस भौतिक दृष्टि के पीछे हैं, अर्थात जो हमारी भौतिक इंद्रियों के पीछे हैं, अर्थात जो हमारी भौतिक इंद्रियों से देखे नहीं जाते हैं, उसे अधोक्षज कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण कभी भी इस भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, और कृष्ण का नाम अधोक्षज इसलिए है क्योंकि उसे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। प्रायः कुछ लोग कहते हैं आप कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, कभी देखा है कृष्ण को? कभी देखा नहीं कृष्ण को और कृष्ण कृष्ण करते हैं। यदि भगवान है, परमात्मा है, तो सामने आना चाहिए। तो कृष्ण को सब लोग नहीं देख सकते हैं, कृष्ण को इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है, भगवान जो है, वह आध्यात्मिक तत्व है, और हमारा यह शरीर, यह इंद्रिया भौतिक तत्व है। भौतिक उपकरण से आध्यात्मिक तत्व को कभी भी नहीं देखा जा सकता। यदि हमें आध्यात्मिक भगवान को देखना है तो आध्यात्मिक आंख चाहिए, और आध्यात्मिक आंख यदि मिल जाए तो हम भगवान को जरूर देख सकते हैं। प्रायः मैं दृष्टांत देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि आप भगवान को देखे नहीं हो और कृष्ण कृष्ण कर रहे हो। एक बार ऐसा व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिल गया है। मैं जा रहा था बोरीवली, और मैं प्रतिदिन हाथ में माला जपते जपते जाता था, और वो व्यक्ति मुझे रोज देखता था, ये हरे कृष्ण करता है। तो एक बार उसने मुझे पूछ ही लिया कि आप ये हरे कृष्ण करते हो, क्या कृष्ण को देखा है तुमने? मैंने कहा नहीं। तो नहीं देखा तो क्यों रोज इतना माला जपते रहते हो? कहा नहीं देखा तो क्या वो नहीं है? हमें विश्वास है। वो कहता नहीं, कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो लोगों को सुधारने के लिए ऐसा कहा गया है, डराने के लिए कहा गया है कि कृष्ण भगवान, कृष्ण विष्णु कुछ है ही नहीं। तब मैंने कहा चलो इसको उत्तर देना ही होगा। मैंने कहा ठीक है चलो मैं मानता हूं। तो मैंने कहा कि ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को चलाने वाला कोई है कि नहीं? उसने कहा है। मैंने कहा नहीं, ये ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। अरे भाई आगे, उसने कहा आगे पहले डिब्बे में मोटरमैन बैठा है, वो ट्रेन को चला रहा है। मैंने कहा इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने वाला यदि कोई होता तो मुझे दिखता नहीं? उसने कहा देखो भाई साहब, यदि आपको ट्रेन को चलाने वाले को देखना है तो इससे इस डिब्बे से नीचे उतरो और आगे के डिब्बे में जाओ, वह आपको खड़ा मिलेगा। मैंने उसे इतना ही कहा कि एक तुच्छ पंच महाभौतिक देह ट्रेन को चलाने वाले को देखने के लिए डिब्बे से उतरकर आगे जाने की आवश्यकता है, तो परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे ही हम कहते हैं कि हम नहीं देखते तो नहीं मानेंगे। हर एक साधारण व्यक्ति को देखने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, तो परब्रह्म भगवान को देखने के लिए प्रयास नहीं करना होगा? हाँ करना होगा। और वो प्रयास क्या है? कहते हैं अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हम भगवान को देख सकते हैं और देखते भी हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर नित्य निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं, परंतु प्रेम रूपी भक्ति रूपी आंख पर अंजन चढ़े। तो अनर्थ से मुक्त होने के लिए धन भी यदि चाहिए, यदि धन चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान सब कुछ देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जन, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत शरण। अर्थात जिसको धन भी चाहिए वह भी मेरे शरण में आओ, मैं सब कुछ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लक्ष्मीपति हूं, लक्ष्मी का नाथ हूं। पूरा जगत विश्व ब्रह्मांड जिस लक्ष्मी के पीछे पड़ा है, वैसी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी भगवान के चरणों में गिरी है उनकी सेवा करने के लिए। सह लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानन गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजन। लक्ष्मी के नाथ, लक्ष्मी चाहिए, कर्तव्य का पालन करना है, उच्च लोक चाहिए या प्रेम करना है भगवान से, तो अधोक्षज में भक्ति करनी होगी। कहते अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। अब वेद व्यास जी समाधि में बैठकर यह सब कुछ सोच रहे हैं और समाधि में बैठकर इतना यह सबसे पहले भगवान को देखें, उसके बाद माया को देखें, माया के द्वारा संसार के जीव जितने दुखी हैं या जीवों की दुखी स्थिति देखे और संसार के लोगों का दुख कैसे दूर हो सके यह भी देख लिया। संसार के लोगों का दुख भगवान कृष्ण की भक्ति से दूर हो सकता है, लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि लोग भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? क्योंकि भक्ति का अर्थ है भगवान की लीला सुनना, तब सब संसार के लोग भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, इसलिए वेदव्यास जी भागवत संहिता भागवत ग्रंथ लिखने के लिए शुरू कर दिए, भागवत ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिए। और धीरे 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 करके वेदव्यास जी भागवत लिखते गए। इस भागवत में 12 स्कंध का निर्माण किए, 365 अध्याय का निर्माण किए, 1270 उवाच, 18,000 श्लोक और 5,70,000 शब्द का निर्माण वेदव्यास ने किया। और अंत में इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की रचना वेदव्यास ने कर दी। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की। भागवत ग्रंथ की रचना वेदव्यास जी के द्वारा हुई और यह भागवत ग्रंथ वेदव्यास जी ने भक्ति करने वाले लोगों के लिए रचना की। और भक्ति क्यों करनी है? दुखों से मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त। तो भागवत की रचना हो गई, ठीक है, भागवत हमारे पास है, रोज प्रणाम करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, हो जाएगा सब कुछ। नहीं, सूत गोस्वामी कहते हैं वेद व्यास ने अपना काम कर दिया, भागवत की रचना कर दी, परंतु जब तक कोई उसे सुनेगा नहीं, यस्याम वे श्रुय मानायाम, जब तक भागवत को श्रुयु सुना नहीं जाएगा तब तक किसी का उद्धार नहीं हो सकता। और यदि कोई भागवत को सुन ले तो क्या हो सकता है? यस्याम वे श्रुय मानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। वे व्यासी रचित भागवत ग्रंथ का यदि कोई श्रवण करता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, कृष्ण का दीवाना बन जाता है, कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। भागवत का सबसे पहला तात्पर्य भागवत की रचना क्यों की वेदव्यास ने, यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णे परम पुरुषे भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न करने के। तो सबसे पहला प्रश्न यह हो सकता है कि कृष्ण से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? हम हमारी पत्नी से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, कृष्ण से क्यों प्रेम करें भाई? हम धन से प्रेम करेंगे, कृष्ण से क्यों करें? कृष्ण से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? तो भक्तों, इसके लिए हमें एक सिद्धांत को समझना होगा। वैसे तो यह सिद्धांत बहुत गहरा है, परंतु एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा, कथा के द्वारा आसानी से आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं कि हमें कृष्ण से प्रेम करने की क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है। क्योंकि यह आत्मा, सबसे पहले यह जानना होगा कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का सर्वोच्च धर्म है, आत्मा का सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रेम करना। आत्मा और सबके अलावा रह सकती है, परंतु प्रेम के अलावा कभी नहीं रह सकती। यह आत्मा का सबसे बड़ा गुण है, आत्मा को प्रेम चाहिए। इसका अनुभव आपने अपने जीवन में किया होगा। अब देखो, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वे अपनी माता से प्रेम करता है। जैसे ही मां दूर हो जाती है तो वो बालक रोने लगता है, तो जन्म लेते ही माता से प्रेम करता है। जब धीरे 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 बड़ा होता है तब वह देखता है कि माँ तो केवल दूध पिलाती है, भोजन खिलाती है, परंतु पिताजी तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आते हैं। अब वह बालक पिताजी के साथ प्रेम करने लगता है, पिताजी की रोज राह देखकर बैठता है कब ऑफिस से आएंगे। अब माँ से प्रेम खत्म, पिता के साथ प्रेम करने लगा। ये हमारी कथा है। तब धीरे 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 जब खेलने की उम्र हो जाती है, पिताजी घर पर आते हैं, बालक घर पर नहीं होता है, देखा तो बालक नीचे खेल रहा है। अब उस बालक का प्रेम माता से हट गया, पिता से हट गया, अब मित्रों के साथ प्रेम हो गया। और कितना प्रेम, माता पिता बच्चों को बुला बुला कर थक जाते हैं, फिर भी घर पर नहीं आते हैं, और अपने मित्रों के लिए एक बार अपने माता पिता को छोड़ देंगे, गाली दे देंगे, परंतु मित्रों को नहीं छोड़ेंगे। उस बालक का पूर्ण प्रेम मित्र के साथ हो जाता है। धीरे 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 वो बड़ा होता है, कॉलेज में आता है, फिर जो प्रेम उस मित्र के साथ था, फिर वो प्रेम किसी लड़की के साथ हो जाता है। सबकी यह कथा है, हमारे जीवन की व्यथा है। फिर किसी लड़की के साथ प्रेम हो जाता है, फिर उसमें भी दो तीन लड़की बदलती रहती हैं, और अंत में वह प्रेम स्थायी हो जाता है और किसी के साथ विवाह कर लेता है। फिर वह पूरा प्रेम अपनी पत्नी के साथ करता है। फिर जैसे ही पत्नी विवाह हुआ तो फिर बच्चे बच्चा होता है, फिर पत्नी से पूरा प्रेम हट जाता है। बच्चा होने के बाद पति का पत्नी से प्रेम नहीं होता है, पुत्र से प्रेम होने लगता है। देखिए, ध्यान दीजिए, जन्म से माता से प्रेम, फिर पिता के साथ, मित्र के साथ, फिर किसी लड़की के साथ, फिर पत्नी के साथ, फिर बच्चे के साथ। सब लोग बदलते रहे, परंतु एक चीज नहीं बदली, वो क्या है? प्रेम। कथा तो बहुत लंबी है, सुनाऊं? फिर वो बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे फिर वो बालक ही अपने पिता की तरह जन्म से माता से प्रेम, फिर पिता से प्रेम, मित्रों से प्रेम। परंतु धीरे धीरे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो माता पिता अपने पुत्र को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। आज के माता पिता वे स्वयं अच्छा नहीं खाएंगे पिएंगे, परंतु अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, पहनाते हैं, अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं और वो बालक इंग्लिश बोलना सीख जाता है। फिर बालक पढ़ा लिखा है तो फिर पत्नी भी पढ़ी लिखी ढूंढते हैं, फिर पत्नी वो पढ़ी लिखी पत्नी आज की मॉडर्न वाइफ जब घर पर आती है आज की मॉडर्न वाइफ जब घर पर आती है तो कहती है कि अब अपने पति को नाम से पुकारती है कि देखो आपके माता पिता बहुत पुराने रिवाज के हैं और हम हैं मॉडर्न जमाने के, इसलिए काम करो हम माता पिता से अलग रहने के लिए चले जाते हैं, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तो आपके माता पिता यहां रहेंगे। प्रायः ये कॉमन डायलॉग है। फिर वो माता पिता बेचारे अपना घर छोड़कर चले जाते हैं कि पुत्र ठीक से घर पर रहेंगे। फिर वे माता पिता कहीं पर अकेले रहने लगते हैं भाड़े के मकान में और धीरे धीरे करके फिर वो बूढ़े और बूढ़ी उसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी मर गई, बूढ़ा बेचारा अकेला बचा, ठीक से भोजन बना नहीं सकता है, क्या करे, यहाँ जूह चौपाटी पे जाकर भेलपूरी पानीपूरी खाकर घर पर वापस आ जाता है। एक दिन की बात, उसने एक बिस्किट का पैकेट लिया और बिस्किट खाते हुए आ रहा था तो दो बिस्किट नीचे गिर गए। तुरंत कुत्ता आया और उस बिस्किट को खाने लगा। कुत्ते ने सोचा और बिस्किट मिलेंगे, उस बूढ़े के पीछे पीछे आया। बूढ़े ने बहुत लकड़ी से दूर किया परंतु वो दूर नहीं हुआ। बूढ़ा तो घर पे आकर दरवाजा बंद करके सो गया, परंतु कुत्ता उसके दरवाजे के द्वार पर रात भर बैठा रहा। सुबह दूध लेने के लिए जब दरवाजा खोला तो उस बूढ़े ने देखा कि धन्य है यह कुत्ता, धन्य है, मैंने मेरे जीवन में कितने लोगों से प्रेम किया, माता से प्रेम किया, पिता से प्रेम किया, मित्रों से प्रेम किया, लड़की से प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, परंतु वास्तविक प्रेम करने वाला तो यह कुत्ता है। आज मुझे सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो यह कुत्ता प्रेम करता है। फिर कुत्ते को वेलकम कर देता है, आइए आप महाशय घर पर आ जाइए। फिर वह बूढ़ा अपने जीवन के अंत समय में कुत्ते के साथ प्रेम करने लगता है। भक्तों, कहानी का इतना ही तात्पर्य है कि जीव का स्वभाव है प्रेम करना, यह जीव प्रेम करना नहीं भूल सकता है और प्रेम के बिना आत्महत्या भी कर लेता है। जीव का एक स्वभाव सिद्धांत यह है कि यह प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए। GOD गॉड के साथ यदि प्रेम नहीं करते हो तो बिल्कुल उसका रिपीट मार दो, DOG डॉग के साथ प्रेम करना होगा। वास्तविक प्रेम गॉड भगवान ईश्वर के साथ होना चाहिए, कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे प्रेम को पूर्ण कर सकते हैं। इस संसार का कोई भी जीव हमारे प्रेम को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए यस्याम वेश्य माणायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति प्रेम क्यों करता है? प्रेम की बात आ गई है इसलिए कह रहा हूं। प्रेम क्यों करते हैं लोग? एक लड़का एक लड़की से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह लड़की लड़के की इच्छा पूरी करती है, और लड़की लड़के से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि लड़का उसकी इच्छा पूर्ण करता है। परंतु कब तक एक दूसरे दूसरों की इच्छा पूर्ण करेंगे? जीव पूर्ण नहीं है इसलिए एक दूसरों की इच्छा पूर्ण कभी नहीं कर सकते हैं। अरे हम हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की इच्छा कैसे पूर्ण कर सकते हैं? परंतु कृष्ण पूर्ण है, परम पुरुष है, वे सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रेम एकमात्र कृष्ण से हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि कृष्ण एक पुरुष है और हम भी पुरुष हैं, तो पुरुष पुरुष आपस में कैसे प्रेम करें? तो बहुत सुंदर यहां पर शुद्ध गोस्वामी सिद्धांत देते हैं कि वास्तव में कृष्ण एक ही पुरुष हैं और बाकी सब स्त्री हैं। इस संसार में रहने वाली माताएं और प्रभुए, पुरुष और स्त्री, ये सब लोग प्रकृति हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस भौतिक जगत को प्रकृति कहा गया है। यदि कोई संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता है तो प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है। प्रकृति जो है वह स्त्रीलिंग में है। तो जीव चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, ये सब प्रकृति है, इसलिए सब लोग स्त्रीलिंग में है। तो प्रकृति स्त्री है और भगवान कृष्ण परम पुरुष है, इसलिए इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों का प्रेम कृष्ण के साथ माधुर्य भाव में हो सकता है, शुद्ध प्रेम हो सकता है। तो यस्याम वेश्यमाणायाम श्रीमद् भागवत सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। और यह आत्मा का जो मांग है, आत्मा को जो सुखी होने का कार्य है, वो पूर्ण हो सकता है। भक्तों, जब तक आत्मा को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक हम कभी नहीं सुखी होंगे। संसार में लाखों लोग सुखी होने के लिए बहुत बहुत लाखों प्रयास करते हैं, परंतु सुखी कोई नहीं हो रहा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, परंतु हमसे 10 गुना धनी है वह भी दुखी। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास गाड़ी आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी के पास 5 गाड़ी है फिर भी दुखी है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास अच्छी पत्नी आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, पत्नी वाले तो सबसे ज्यादा दुखी है। तो वास्तव में सुख एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करना है। और सुखी होने के लिए लोग बहुत बहुत बाहरी प्रयास करते हैं, और सुखी होने के लिए अच्छे से किसी होटल में जाते हैं और इस शरीर को बहुत सुंदर भोजन खिलाते हैं। सुखी होने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं। सुखी होने के लिए कहीं महाबलेश्वर लोनावाला घूमने के लिए जाते हैं। सुखी होने के बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु सुखी कोई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि संसार के सब लोग इस शरीर को सुखी कर रहे हैं। हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। यदि हमें सुखी होना है तो आत्मा को सुखी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति के घर पर एक तोता था और तोते को एक पिंजरे में बंद करके रखा था, और वह तोता बहुत रोने लगा। जब तोता रोने लगा तो उस तोते के मालिक ने सोचा कि बेचारा लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, तो लोहे के पिंजरे को निकालकर चांदी के पिंजरे में तोते को बंद किया। फिर भी तोता रो रहा था। फिर सोचा कि सोने के पिंजरे में रखूंगा तो यह सुखी हो जाएगा। चांदी के पिंजरे को निकालकर उस तोते को सोने के पिंजरे में रखा, फिर भी रो रहा था। फिर उसने अंत में डायमंड के हीरे के पिंजरे में बंद किया, फिर भी तोता रो रहा था। तोता इसलिए रो रहा था क्योंकि तोते को भूख लगी थी। जब तक तोते को भोजन न दिया जाए तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। बाहर से हम कितने भी पिंजरे बदले, बाहर से कितने भी सुंदर कपड़े पहने, कितना भी सुंदर भोजन खाए, जब तक अंदर रहने वाली आत्मा को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रेम करना होगा। और प्रेम किसके साथ कर सकते हैं? प्रेम एकमात्र कृष्ण के साथ कर सकते हैं। अच्छा, कृष्ण के साथ प्रेम करने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण के साथ प्रेम करने के लिए वेदव्यास जी ने इतने सुंदर भागवत ग्रंथ का निर्माण किया, भागवत ग्रंथ को सुनना है। हरे कृष्णा तो भागवत सुनने से सबसे पहला लाभ होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है। वास्तव सुनने से ही प्रेम होता है, इसलिए गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं,
राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा भरो श्रवण कूट का।
भगवान के चरणों में रति प्रेम उत्पन्न करना है तो भाव के साथ भागवत सुनना चाहिए। तो भागवत सुनने से भगवान से प्रेम होगा, ये पहले। और क्या फायदे होंगे? ये तो आध्यात्मिक फायदा। भौतिक फायदे कहते हैं भागवत सुनने से शोक मोह भय आपहा। भागवत सुनने से व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाए। शोक का अर्थ क्या होता है? शोक का अर्थ होता है कि भूतकाल की बात को याद कर करके दुखी होना, इसे शोक कहते हैं। और भय का अर्थ क्या होता है? भविष्य में आने वाली चिंता को सोच सोच कर दुखी होने की क्रिया को भय कहते हैं। और ये शोक और भय क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है। मोह मोहित होने के कारण व्यक्ति शोक और भय में है। इस संसार में सब लोग भयभीत हैं, सब लोग डरते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसी से न डरता। किसी ना किसी से सब लोग डरते हैं। कुछ लोग अपने पति से डरते हैं, तो कुछ पति अपनी पत्नी से डरते हैं। कुछ लोग संसार में अभी जो चल रही है उस मंदी से डरते हैं, क्या होगा। कुछ लोग पुलिस से डरते हैं। किसी ना किसी ने लोग से लोग डरते हैं। और किसी से भी न डरे तो मृत्यु से तो सब लोग डरते हैं। मृत्यु से सब लोग डरते हैं। एक कवि ने उर्दू में बहुत सुंदर लिखा है कि मृत्यु से कितना डर लगता है। उसने शेर लिखा, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। मरने का जब मैं नाम सुनता हूं तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरने से सब लोग डरते हैं। यदि मृत्यु जैसे भय से मुक्त होना चाहते हैं तो अभय प्रदान करने वाले भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम उस गोविंद की कथा सुननी हो। इसलिए गोविंद दास जी बहुत सुंदर हम भक्तों को कहते हैं, समझाते हैं कि आप अपने मन को समझाइए। क्या समझाइए?
भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे।
अभय चरण अभय प्रदान करने वाले भगवान गोविंद के चरणों में तू लग जा। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मानव या मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और इस भवसागर को पार करने के लिए 84 लाख की योनि से बचने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के भक्तों का संग करके इस संसार सागर को पार करना चाहिए।
भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय मानव जन
करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। तो भागवत कथा का श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है और शोक मोह और भय से जीव मुक्त हो सकता है। स संहिताम भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मज शुक मध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। सुध गोस्वामी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने यह भागवत ग्रंथ का निर्माण किया और भागवत ग्रंथ का निर्माण करने के बाद अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को इसका अध्ययन कराया। सुखदेव गोस्वामी को इस भागवत का अध्ययन कराया जिससे सुखदेव गोस्वामी आगे चलकर भागवत का प्रचार कर सके। सुखदेव गोस्वामी वैसे तो भगवान की नित्य लीला के नित्य पार्षद हैं, परंतु संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए, वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में। और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत ग्रंथ का अध्ययन कराया। इस प्रकार से जब सुध गोस्वामी ने कहा तब शौनक जी हाथ ऊपर करते हैं और कथा को रुका देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। श्री शौनक वाच, शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे, सवे निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्ष को मुनि कस्य वा प्रति मेताम आत्म राम समभ्य सर। प्रभु सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म समाधि में थे, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंदी थे, ब्रह्म समाधि में लीन थे, तो भला जो ब्रह्म समाधि में बैठ गया है, ब्रह्म समाधि में लग गया है, वह क्यों ये भागवत का अध्ययन करने की मेहनत करेगा? जिसको समाधि लग गई है वह क्यों अपने दिमाग पर जोर दे? सवे निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि, मुनि बताइए कि सुखदेव गोस्वामी भागवत का अध्ययन क्यों किए? तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति है तु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है, कितना भी बड़ा योगी क्यों न हो, कितना भी बड़ी समाधि में क्यों न कोई बैठा हो, कृष्ण की लीला को सुनकर वह समाधि भी टूट जाती है, ब्रह्म समाधि टूट जाती है, शिव जी अपना ध्यान भूल जाते हैं, गोपियां अपने अपने घर का काम करना भूल जाती है। भगवान की अद्भुत लीला। तो सुखदेव गोस्वामी आत्म राम थे, आत्मा राम आत्म आप तो काम थे, परंतु भगवान की लीला ऐसी है कि आत्म राम सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण की उस कृपा के ऊपर और कृष्ण की उस रूप के ऊपर लट्टू हो गए। जो सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैराग्य प्राप्त कर लिए थे, 16 साल तक माता के घर में रहे माया से बचने के लिए, और फिर जन्म लिए तो बिना वस्त्र पहने घर से भाग गए, वैरागी बन गए। और ऐसे वैरागी सुखदेव गोस्वामी ने जब भगवान की कृपा का वर्णन सुना, जंगल में जाकर ब्रह्म समाधि में बैठ गए। परंतु उन्होंने जब भगवान की कृपा का वर्णन सुना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगा सया पायत अपीय साधवीम लेवे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। जो पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए, खत्म करने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में माता की गति प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ बना लिया। बताओ, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपावान कौन हो सकता है? इस संसार में कोई व्यक्ति आपको मारने और काटने के लिए आए और आप उस व्यक्ति को अपने घर में माँ और पिता बनाकर रख लो, यह कभी हो नहीं सकता है। परंतु पूतना जैसी राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई, परंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं, कृष्ण ने यह नहीं देखा कि मुझे मारने के लिए आई है। कृष्ण ने इतना ही देखा कि मेरे पास चलकर आई है, बस। कैसी भी है, कुछ भी है, कुछ भी करने के लिए आई है, परंतु चलकर मेरे पास आई है, इसलिए ये कृपा का पात्र है। भक्तों, मन में कैसा भी भाव हो, कितने भी दुर्विचार क्यों न हो, चलकर यदि हम भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो निश्चित भगवान की कृपा होती है। इसलिए सभी भक्तों को भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आत्म रामश्च मुनियो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म समाधि में थे, टूट गई ब्रह्म समाधि। और जब भगवान के रूप का वर्णन सुना तो सुखदेव गोस्वामी विह्वल हो गए कि कहां है यह बोलने वाला, कहां है यह कृष्ण। और फिर अंत में अपने पिता के पास आए और वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिया। इस प्रकार से सूत गोस्वामी शौनक जी को सुखदेव गोस्वामी ने कैसे भागवत प्राप्त किया यह बताए। अब सुद गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षितोत राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सुद गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो इस भूमि पर, इस मंडल पर बहुत बड़े वीर थे, वीर योद्धा और कुंती के पुत्र। मैं पांडवों की कथा सुनाऊंगा। भक्तों, यहां पर जो सप्ताह का आयोजन हुआ है, इस सप्ताह का मुख्य विषय है महारानी कुंती की प्रार्थना। हम आने वाले दिनों में महारानी कुंती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जो अद्भुत प्रार्थना हुई है, और ऐसी प्रार्थना जिस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण यद्यपि द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठ चुके थे, केवल सात्यकी को ऑर्डर देना था रथ चलाओ, महारानी कुंती की प्रार्थना को सुनकर भगवान रथ से उतर गए कि बुआ जी, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। यदि कृष्ण को हम हमारे घर लाना चाहते हैं, कृष्ण को हम हमारे घर रखना चाहते हैं, तो महारानी कुंती के द्वारा जो प्रार्थना हुई है उस प्रार्थना को समझना होगा। तो उस प्रार्थना का प्लेटफॉर्म सुद गोस्वामी यहां पर दे रहे हैं कि अब मैं वह कथा सुनाऊंगा जो पांडवों के द्वारा जो लीला हुई थी, पांडवों की और परीक्षित की कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह कथा कृष्ण कथोदयम, क्योंकि पांडव और परीक्षित की कथा कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। इस संसार में वही कथा करनी चाहिए जो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, नहीं तो जीवन बहुत बड़ा धोखा बंद कर रह जाएगा। कथा सब लोग करते हैं, कथा का अर्थ होता है बोलना, बात करना। बंगला में, बंगाली भाषा में हम जो बातचीत करते हैं उसे कथा कहते हैं। की कथा बोले छे, क्या कथा, क्या बोल रहे हैं। तो कथा का अर्थ होता है बोलना। इस संसार में सब लोग बोल रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग बोलते हैं, परंतु उसकी कथा उसका बोलना कृष्ण से अलग है, कृष्ण से दूर है, तो वह बोलना प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेंढक के ड्राउ ड्राउ के समान होगा। जैसे वर्षा की ऋतु में, बारिश की ऋतु में मेंढक बहुत ड्राउ 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 करते रहते हैं, परंतु वह मूर्ख मेंढक नहीं जानते हैं कि यह आवाज करके हम सर्प को निमंत्रण दे रहे हैं। वास्तव में सर्प के कान नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया है, परंतु यह मेंढक इतने मूर्ख है, इतने मूर्ख है, इतना जोर जोर से ड्राउ ड्राउ करते हैं, कान नहीं रखने वाला सर्प भी जान लेता है कि यहां पर मेंढक है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथा के अलावा जितनी भी कथा करते हैं यह मेंढक के ड्राउ ड्राउ के समान है, और यह काल सर्प कभी हमें छोड़ेगा नहीं। कथा वही होनी चाहिए जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए सूत गोस्वामी कृष्ण से जुड़ी हुई कथा जो पांडवों की कथा है उसका वर्णन कर रहे हैं, और बहुत सुंदर। इतना कहे कि जब पांडवों की याद आ गई तब सूत गोस्वामी अब गाने लगे। क्या गाए? यदा मृदय कौरव सिंजयाना, यदा मृदय कौरव सुजराना, वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु,
वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु,
वृको गोस्वामी पांडवों का नाम लेकर अत्यंत हृदय प्रसन्न हो गए, और कहते हैं कि मृदे, मृदे का अर्थ होता है महाभारत का युद्ध, मृदे कौरव सिंज या नाम, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के वीरों के अनंतर कौरवों के पराक्रम, पांडवों के पराक्रम से लाखों लोग मौत के घाट उतर गए, और 18 दिन तक यह युद्ध चला, और अंतिम दिन में कहते वृकोदर भीम के द्वारा, भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन के जांघ पर जोर से प्रहार किया गया, और यह भीम की गदा से दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि में घायल हो गए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरव के ऊपर विजय प्राप्त की। कौरव को मारना आसान नहीं था। भागवत के दशम स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं कि कौरव के पक्ष में कौरव की सेना कैसी थी, कहते हैं दुर्योधन की सैन्य सागरम, कौरव की सेना सागर के समान थी, और हमारे पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी। हमारे पांडवों की क्या हैसियत के कौरव की सेना के सामने युद्ध कर सके, क्योंकि जिस सेना में पितामह भीष्म हो, जिस सेना में गुरु द्रोणाचार्य हो, जिस सेना में कर्ण हो, इतने महान महान योद्धा हो, ऐसी सेना के सामने हम कैसे जीत सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पांडव उस कौरव की सेना को ऐसे लांग गए जैसे गाय का बछड़ा एक छोटे से गड्ढे को लांग जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब विजय हुए। वास्तव में कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं और कृष्ण को दोष देते हैं कि कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र की भूमि में सबको मरवाया है, कृष्ण ही सबको मराने वाले हैं। आगे कुंती महारानी इसको बिल्कुल क्लियर कहेगी अपनी प्रार्थना में, लेकिन फिर भी इस बात को जानने के लिए हमें कुरु वंश का इतिहास जानना होगा। यदि कोई कुरु वंश के इतिहास को समझ ले तो यह बिल्कुल जान सकता है कि कौरव और उसमें श्रेष्ठ दुर्योधन मरने के योग्य ही थे। कुरुवंश का इतिहास प्रारंभ होता है कि इस पृथ्वी पर तीन भरत हो चुके, एक है राजर्षि भरत जो आगे चलकर जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए, एक है भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत और एक है शकुंतला के पुत्र भरत। शकुंतला के पुत्र भरत इस भारत वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट थे। भक्तों आप जानते हो या नहीं जानते हो, उस समय पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता था, पूरी पृथ्वी ही भारत नाम से थी और हस्तिनापुर आज की दिल्ली पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पूरी दुनिया पर राज करता था। परंतु धीरे धीरे करके इस भारत वर्ष का विभाजन होता गया और आज दुनिया के नक्शे में बहुत छोटा सा भारत बनकर रह गया है। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, उम्र हो गई, जीवन का लंबा समय बीता परंतु पुत्र नहीं हुआ। अब हस्तिनापुर की ही गद्दी के राजा थे और राजा का पुत्र ही राजा बनता है। अब प्रश्न उठा कि हस्तिनापुर की गद्दी पर किसे बिठाया। तब शकुंतला के पुत्र भरत ने अपनी प्रजा से शांतनु नाम के एक बालक को अपने गोद बिठाया, गोद लिया और शांतनु को इस भारत वर्ष का राजा बनाया। वास्तव में इनका नाम शांतनु नहीं था, परंतु जैसे भरत राजा ने इसे स्वीकार किया, शकुंतला का के वंश वंश शकुंतला का वंश बुझने जा रहा था, परंतु यह आए और इस वंश को पुनर्जीवित किए, इसलिए इसका नाम शांतनु हुआ। महाभारत में और एक कथा है कि शांतनु एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति थे जिसको देखकर कितना भी दुखी व्यक्ति हो, कितना भी चिंतित व्यक्ति हो, शांत हो जाता था, इसलिए इसका नाम शांतनु हुआ। और महाभारत में यहां तक कहा है कि शांतनु राजा ऐसे थे, बूढ़ा व्यक्ति यदि उसे देखे तो वह जवान हो जाता था, इतने तेजस्वी थे। और इसीलिए राजा भरत ने उसे गोद लेकर इस हस्तिनापुर का राजा बनाया। राजा भरत की मृत्यु हुई, शांतनु बड़े हुए और बड़े होकर शांतनु राजा ने गंगा के साथ विवाह किया। राजा शांतनु ने गंगा के साथ विवाह किया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि शांतनु का गंगा के साथ विवाह क्यों हुआ। उसमें भी एक कथा है, सब लोग ध्यान से सुनिए, कथा के अंदर कथा आएगी, बहुत बड़ा रहस्य है। ये शांतनु अगले जन्म में इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए थे और अगले जन्म में इसका नाम था महाभीष। ये महाभीष नाम के राजा थे और एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे, बहुत राज राजर्षि बैठे थे और उस समय गंगा उस ब्रह्मा जी की सभा में आई और कुछ कारणवश गंगा के शरीर से दुपट्टा खिसक गया। गंगा के शरीर से वह साड़ी खिसकने के कारण सभी राजाओं का सिर झुक गया, परंतु यह महाभीष नाम के राजा का सिर नहीं झुका। इसलिए ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर महाभीष राजा को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तरह तुमने हरकत की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा। और इसी गंगा के साथ विवाह होगा और यही गंगा तेरे दुख का कारण बनेगी। और इस श्राप के कारण महाभीष राजा गंगा के साथ विवाह किया। गंगा शांतनु राजा के साथ विवाह की और विवाह करके 9 पुत्र को जन्म दिया, क्षमा कीजिए 8 पुत्र को जन्म दिया और उनमें से 7 पुत्र को एक एक करके पानी में बहा दिया। अब प्रश्न होता है कि गंगा ने अपने सात पुत्र को पानी में क्यों बहा दिया। यद्यपि शांतनु राजा उसे पूछना चाहते थे, परंतु गंगा ने विवाह करने से पहले ही शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करोगी आपको ना नहीं कहना है। जिस दिन आपने मुझ पर क्रोध किया और ना कहा, उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही गंगा को पुत्र जन्म होता तो वह गंगा नदी में उसे डाल देती। एक एक करके सात पुत्र को बहा दिया। आठवां पुत्र का जब जन्म हुआ तब शांतनु राजा रह नहीं सके और अंत में गंगा के ऊपर क्रोध करके कहा कि क्यों इस प्रकार से पुत्र को पानी में छोड़ देती है। गंगा ने कहा, बस आप अपने पुत्र को रखो और मैं जा रही हूं। इस विधान के पीछे भी कुछ कारण था, क्योंकि गंगा इतनी क्रूर नहीं है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को पानी में डाल दे। इसके पीछे रहस्य की बात यह थी कि गंगा जब स्वर्ग लोक से यहां पर आ रही थी शांतनु राजा के साथ विवाह करने के लिए, तो रास्ते में उसे आठ वसु मिले और ये आठ वसु एक समय की बात वरुण के पुत्र वशिष्ठ के झोपड़ी में गए थे। वशिष्ठ जी यज्ञ करने के लिए कामधेनु गाय रखे थे जिसका नाम था नंदिनी, और यह कामधेनु गाय ऐसी थी कि इसका दूध यदि कोई एक बार पिले तो वह 10,000 वर्ष तक जी सकता है। महाभारत में वर्णन है। तो ये आठों वसु अपनी पत्नियों को लेकर हनीमून करने निकले थे। ये वसुओं की इच्छा नहीं हुई, पर उनकी पत्नियों की इच्छा हुई कि ये गाय जरा हमारे घर पर लेकर आओ ना। तब वसुओं ने अपनी पत्नी के ऊपर पत्नी के कहने पर विचार नहीं किया, और विचार न करते ये आठों वसु गए और वशिष्ठ जी की उस नंदिनी गाय को चुरा कर लेकर आए। वशिष्ठ जी को जैसे ही पता चला तो आठों को श्राप दे दिए कि आपने यज्ञ करने वाली मेरी गाय का अपहरण किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हो। और इनमें से जो आपके बड़े भाई हैं, आठवें वसु जिसका नाम है दो नामक वसु, आप पृथ्वी पर अनंत वर्ष तक रहोगे, ये मेरा श्राप है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी का श्राप लेकर आठों वसु रास्ते से आ रहे थे। बीच में गंगा का मिलना, गंगा जी ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? कहा कि हमें श्राप मिला है मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जन्म लेना। गंगा का हृदय पिघल गया। गंगा ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दूंगी और एक एक महीने में तुम सबका उद्धार कर दूंगी। तो इस प्रकार ये आठ वसु का उद्धार गंगा ने किया, नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र को बहा दिया। सात वसु को बहाया और आठवें वसु, क्योंकि धो नामक वसु के ऊपर बहुत बड़ा श्राप लगा था, और ये दो नामक वसु आगे चलकर देवव्रत हुए और गंगा उसे लेकर गई धनुष विद्या सिखाकर शांतनु राजा को अर्पण कर। शांतनु राजा के पास पुत्र है और साधारण पुत्र नहीं, समस्त गुण से विभूषित जिसका नाम देवव्रत है। परंतु गंगा अपनी पत्नी बिछड़ जाने के कारण राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित रहते। एक समय की बात, राजा शांतनु शिकार करके जंगल से वापस लौट रहे थे। उस समय उन्होंने एक नदी के किनारे एक नाव चलाने वाली एक स्त्री को देखा, और वह स्त्री इतनी सुंदर थी राजा शांतनु का मन उस स्त्री में लग गया। और वह स्त्री और कोई नहीं, सत्यवती, जिसका एक नाम मत्स्यगंधा था। शांतनु का मन उस सत्यवती के ऊपर आ गया। राजा शांतनु सत्यवती के पास आए और आकर प्रार्थना करने लगे, देवी मेरा मन तुम पर आ गया है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे से विवाह करो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि मेरे पिता हां कह दे तो मुझे कोई दुविधा नहीं है आपसे विवाह करने के लिए। तब राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए उनके घर उनका हाथ मांगने के लिए। राजा शांतनु ने कहा कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं और मेरे राज राजर्षि इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हूं, उनका विवाह मेरे साथ कराइए। तब सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ कराऊंगा, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि इस सत्यवती के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसे आपको हस्तिनापुर का राजा बनाना होगा। तब शांतनु ने कहा, शांतनु राजा ने कहा कि ऑलरेडी मेरे पास मेरा एक पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है और वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब उस सत्यवती के पिता ने कहा तो फिर मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ नहीं करा सकता हूं। राजा शांतनु एक तो दुखी थे ही, ऊपर से बहुत दुखी हुए और महल में बिल्कुल चिंतित रहते थे, शोक मग्न रहते थे। परंतु देवव्रत प्रथम कोटि के पुत्र थे। वास्तव में पुत्र ऐसे होने चाहिए जो पिता के मन की बात को जान ले। देवव्रत समझ गए कि पिता को क्या दुख है और किसी से जान लिए कि पिता को सत्यवती के साथ विवाह करना है। देवव्रत मन ही मन में सोचने लगे कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के साथ ऐसा कौन है जो विवाह कराना नहीं चाहता है। तुरंत गए सत्यवती के घर पर। भक्तों, हमारे इतिहास में एक ऐसी विलक्षण घटना है, आज के समय में या कभी भी पुत्र का हाथ मांगने के लिए, पुत्र का विवाह कराने के लिए पिता जाते हैं। यहां पर पिता का विवाह कराने के लिए पुत्र जा रहा है। देवव्रत गए और जाकर कहे कि मेरे पिता के साथ सत्यवती का विवाह करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपको? उन्होंने कहा कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा तो ही हम विवाह कराएंगे। देवव्रत ने कहा ठीक है, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब सत्यवती के पिता ने कहा कि हम कैसे इस पर विश्वास करें? तब देवव्रत ने कहा आप विश्वास नहीं करते हो मेरी बात पर? तब उस समय देवव्रत ने एक बहुत बड़ी भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र होगा उसे हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। तब सत्यवती के पिता ने कहा कि यदि आपने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद तो पत्नी का ही चलता है, पति का कुछ नहीं चलता है, और आपकी पति ने जबरदस्ती अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया तो? तब देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं नैष्ठिक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। अब तो आपकी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ करा दो। दो प्रतिज्ञा ली और उस समय यह दोनों प्रतिज्ञा लेते समय देवता प्रकट हुए, आकाश से फूल की वृष्टि करने लगे और यह भीषण प्रतिज्ञा होने के कारण उस दिन के बाद उनका नाम भीष्म हुआ। शांतनु राजा विवाह किए सत्यवती के साथ और शांतनु राजा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि पुत्र तुमने मेरे मन की इच्छा पूर्ण की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा न हो तब तक तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। भक्तों, पुत्र जब पिता को प्रसन्न कर लेता है तब पिता हृदय से आशीर्वाद देता है। फिर भले पिता कैसा भी क्यों न हो, यहां तो पिता एक स्त्री में आसक्त था, परंतु पुत्र पिता को प्रसन्न करने पर माता पिता का बहुत आशीर्वाद मिलता है। इच्छा मृत्यु का वरदान। यहां पर शांतनु और सत्यवती, इससे दो पुत्र जन्म लिए। एक पुत्र का नाम था विचित्र वीर्य और दूसरे पुत्र का नाम था चित्रांगद। चित्रांगद एक दिन की बात, यह चित्रांगद युद्ध करने के लिए गया और युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। अब कुरुवंश का राज्य संभालने के लिए एक पुत्र बचा और वो था विचित्र वीर्य। अब विचित्र वीर्य का विवाह करने के लिए पितामह भीष्म स्वयं गए और अंबा अंबिका और अंबालिका को लेकर आए। जब रास्ते में आ रहे थे तो अंबा ने कहा कि मैं तो मन ही मन शाल्व नरेश को वर चुकी हूं, विवाह कर चुकी हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए। पितामह भीष्म ने अंबा को छोड़ दिया और अंबा शाल्व नरेश के पास गई। यहां पे एक यह घटना है, जब अंबा शाल्व नरेश के पास गई तो शाल्व नरेश ने कहा कि तुम्हारा तो अपहरण हो चुका है, अब अपहरण करने वाले को मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। अंबा बहुत दुखी हुई और दुखी होकर श्राप दे दिया कि यह पितामह यह भीष्म की मृत्यु मेरे कारण होगी। इसलिए अंबा का दूसरा जन्म शिखंडी के रूप में हुआ और भीष्म पिता की मृत्यु का कारण शिखंडी थे। यथा अंबिका और अंबालिका को लेकर आए, विचित्र वीर्य के साथ विवाह हुआ। विचित्र वीर्य ने 7 साल तक लगातार अपनी पत्नियों के साथ भोग किया और अचानक पुत्र प्राप्ति किए बिना ही, संतान बीज के बिना ही विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। अब इस भारत भूमि में सबसे बड़ा प्रश्न कि हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा, वो प्रश्न वहां से लेकर आज तक चल रहा है। ये गादी इतनी दुरू है कि हमारे इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब लोग इस गादी के लिए लड़ रहे हैं। प्रश्न उठा, अब कौन राजा बनेगा? अंबिका और अंबालिका बची हैं। सत्यवती के पति के पुत्र थे वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी ने कहा था कि जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाया और कहा कि इस हस्तिनापुर की गादी को चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए आप अपनी दिव्य दृष्टि मेरी इन दोनों बहू के ऊपर करो। तो सबसे पहले अंबिका वेदव्यास जी के कक्ष में गई और अंबिका ने जब वेदव्यास जी का विकट स्वरूप देखा तो वेदव्यास जी का विकट स्वरूप देखकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली इसलिए अंबिका से जो पुत्र हुआ वह अंधा हुआ और उसका नाम था धृतराष्ट्र। तब सत्यवती ने अंबालिका को भेजा। अंबालिका ने जब वेदव्यास जी के विकट स्वरूप को देखा तो पीली पड़ गई और अंबालिका पीली पड़ने के कारण अंबालिका के गर्भ से जो पुत्र हुआ वो पीले रंग का हुआ और जन्म से ही रोगी हुआ। दोनों पुत्र अच्छे नहीं हुए और उस पुत्र का नाम था पांडु। तब सत्यवती ने एक दासी को भेजा और दासी ने वेदव्यास जी का विकट स्वरूप देखकर बिल्कुल ठीक खड़ी रही, इसलिए दासी के घर से जो पुत्र हुआ बिल्कुल स्वस्थ हुआ और स्वस्थ के साथ साथ महाभागवत विदुर जी का जन्म हुआ। अब विदुर जी के जन्म के पीछे भी मांडव्य ऋषि का श्राप था यमराज जी को, यमराज जी ही विदुर जी के रूप में जन्म लिए। इस प्रकार से इस हस्तिनापुर के 3 युवराज हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब ये तीनों जब बड़े हुए तब प्रश्न उठा कि इस तीनों में से किसे राजा बनाया जाए। तब दासी के पुत्र को तो राजा कोई बना नहीं सकता है, इसलिए विदुर जी को राजा नहीं बनाया। अब 2 ऑप्शन रहे, धृतराष्ट्र को राजा बनाए या पांडु को बनाए। तो सभी ऋषियों ने एक साथ मत दिया कि राज्य चलाने के लिए तो व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए, प्रजा को देखने के लिए रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अंधा कभी राज्य नहीं कर सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र भले यद्यपि ज्येष्ठ हैं परंतु धृतराष्ट्र कभी राज्य नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों ने मत दिया कि हस्तिनापुर का राजा एकमात्र पांडु ही होंगे और राजा पांडु हस्तिनापुर पर शासन करने लगे और बहुत ही सुंदर उनका शासन था और धीरे धीरे करके राजा पांडु बड़े हुए और पांडु राजा का विवाह हुआ 2 पत्नी के साथ और उनकी 2 पत्नी थी कुंती और माद्री। परंतु पांडु राजा को भी श्राप था। देखिए देव का विधान तो देखिए, एक समय की बात, राजा पांडु शिकार करने के लिए गए थे, मृगिड़ा करने के लिए गए, और कुछ पेड़ के पीछे कुछ झाड़ियों में उन्होंने मृग की आवाज सुनी। तो पहले के क्षत्रिय लोग शब्द भेदी बाण मारते थे, शब्द सुनकर बाण मारते थे। मृग का शब्द सुनकर उन्होंने बाण मारा और बाण वो मृग के शरीर को भेद दिया। वास्तव में वो मृग नहीं था, वो एक ऋषि और ऋषि की पत्नी थी। किंदम मुनि नाम के ऋषि थे। किंदम मुनि अपनी पत्नी के साथ संसार की लोक लाज के कारण हिरण का स्वरूप लेकर संग कर रहे थे, और वास्तव में हिरण को नहीं किंदम मुनि को, और वह बाण पति और पत्नी दोनों को भेद दिया। इसलिए मरते समय किंदम मुनि ने पांडु राजा को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस समय तुम अपनी पत्नी का संग करोगे, अपनी पत्नी से स्पर्श करोगे, उस दिन तुम मर जाओगे। अब बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि पांडु राजा के बाद इस हस्तिनापुर का शासन कौन करेगा, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजा हो सकता है, और अपनी पत्नी को तो स्पर्श करने के लिए ना कहा है, स्पर्श करे तो मर जाए, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, पांडु राजा को शासन करने दीजिए। कल पांडु राजा के पांच पुत्र जन्म लेंगे महारानी कुंती की कृपा से, और वो पांचों पांडवों की भगवान किस किस प्रकार रक्षा करते हैं, और महारानी कुंती किस किस प्रकार स्तुति करती हैं, आने वाले दिनों में हम सब लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।